आगे है जी सूरत मुजादिला के बाद सूरत हशर, दोनों का रब देखते हैं। सूरत मुजादिला में हिजबुल्लाह का जिक्र था, सूरत हशर में हिजबुल्लाह कैसे कामयाब होगी वो औसाफ बताए जा रहे हैं। मुजादिला में मुनाफिकों की बातें हैं और सूरत हशर में इनकी अमली मिसाल है। सूरत हशर 59 नंबर की सूरह है, 24 आयते हैं इसकी। मरकजी मजमून है अस्माउल हुस्ना पर मुश्तमिल सही अकीदत तौहीद। आप इसके आखिरी आयतों में अल्लाह ताला की बहुत प्यारी सिफात पढ़ने वाले हैं कि कैसे अल्लाह ताला है और क्या उसकी खूबियों का हक अदा करने की कोशिश की जाएगी। फिर इसी तरह फिक्रे आखरत के नतीजे में कुफार पर मुसलमानों का रोब तारी हो सकता है। जितना बंदे मोमिन को आखरत की फिक्र लगती है ना, उतने कुफार उसके रोब में आ जाते हैं। फिर इस सूरत का नजूल 4 हिजरी में हुआ। मुखलिस महाजरीन और अंसार यानी सहाबा कराम का मुनाफिकीन से तकाबुल है। सूरत में माले फै की बांट है, पीछे माले गनीमत की बांट थी सूरत अल अनफाल में, और माले फै वो होता है जो बगैर लड़ाई के मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से मिल जाए। बनी नजीर जो यहूद का एक कबीला था उनके खिलाफ फर्दे जुर्म है। बनी नजीर का इन्हिला यानी उनको मदीना से निकाला गया उसका तस्कर है। मुनाफिकीन की मुसलमानों की बजाय यहूद से वफादारियों और मुसलमानों से खयानतों का तस्कर है। आइए देखते हैं, हशर लफ्ज से ही आपको हशर याद आ जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बहलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कायनात की इबादत तस्बीह, यानी आप और मैं तो इबादत के लिए नमाज रोजा और कई काम करते हैं, कायनात कैसे करती है ये सब कुछ, उसका तरीका उसका इजहार इधर आपको दिया जा रहा है। और वो क्या है कि वो तस्बीह करती है। और आप इस पूरे बारे में खास तौर पर चूंकि इस वक्त मुसब्बिहात की और मुसब्बहात की सूरतें पढ़ रहे हैं तो तस्बीह के बहुत सारे तस्करे होंगे। आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह की पाकी बयान करती है और वो गालिब बा हिकमत है। कैसे? अल्लाह ताला की कायनात, सूरज चांद सितारे फल फूल सब उसी की तारीफें करते हैं, उसी के गुनगाते हैं। वही है जिसने अहले किताब में से कुफार को इनके घरों से पहले हशर के वक्त निकाला। तुम्हारा गुमान भी ये ना था कि वो निकलेंगे, और वो खुद भी समझ रहे थे कि इनके संगीन कले इन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, बस इन पर अल्लाह तला का अजाब ऐसी जगह से आ पड़ा कि गुमान भी ना था, और इनके दिलों में अल्लाह ने रोब डाल दिया। ये जंगी टैक्टिक्स हैं सारी। और वो अपने घरों को अपने ही हाथों से उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों से भी बर्बाद करवा रहे थे। बस है आंखों वालों, इबरत हासिल करो। और अगर अल्लाह ने इन पर जिला वतनी को मुकद्दर न कर दिया होता तो यकीनन इन्हें दुनिया ही में अजाब देता, और आखरत में तो इनके लिए आग का अजाब है ही। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा तो अल्लाह ताला भी सख्त अजाब देने वाला है। तुमने खजूरों के वो दरख्त काट डाले या जिन्हें तुमने इन्हें इनकी जड़ों पर बाकी रखा, यानी दोनों सूरतों की बात है, यानी टू डिफरेंट ऑप्शंस थी। ये सब अल्लाह के फरमान से था। देखिए अल्लाह कैसे नबी के किए हुए एक काम या आपके दिए हुए एक हुक्म पे सहाबा के किए हुए काम को डिफेंड कर रहा है। ये सब कुछ अल्लाह के फरमान से था, और इसलिए भी कि फासिकों को अल्लाह ताला रुस्वा कर दे। और इनका जमाल अल्लाह ने अपने रसूल के हाथ लगाया है, जिस पर ना तो तुमने अपने घोड़े दौड़ाए हैं ना ऊंट, यानी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बल्कि अल्लाह ताला अपने रसूल को जिस पर चाहे गालिब कर देता है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह ताला तुम्हारे लड़े भिड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगाए वो अल्लाह का है और रसूल का, और कराबत वालों का और यतीमों मिसकीनों का और मुसाफिरों का। क्यों? बुनियादी असूल है इस्लाम का, बड़ी अहम आयत है, नोट कीजिएगा, ताकि तुम्हारे दौलतमंदों के हाथ में ही ये माल गर्दिश करता ना रह जाए, और तुम्हें जो कुछ रसूल दे वो ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो। यकीनन अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। फै का माल इन मुहाजिर मिस्कीनों के लिए है जो अपने घरों और अपने मालों से निकाल दिए गए हैं, वो अल्लाह ताला के फजल और इसकी रजामंदी के तलबगार हैं, और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मदद करते हैं। और इनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी मदीना में और ईमान में इनसे पहले जगह बना ली है और अपनी तरफ हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं, और मुहाजरीन को जो कुछ दिया जाए इससे वो अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते, बल्कि खुद अपने ऊपर तरजीह देते हैं। गो खुद वो कितनी ही सख्त हाजत हो, बात यह है कि जो भी अपने नफ्स के बुखल से बचाया गया वही कामयाब और बामुराद है। और इनके लिए जिनके बात आए जो कहें कि हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे, और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिलों में कीना और दुश्मनी ना डाल। ऐ हमारे रब, बेशक तो शफकत और मेहरबानी करने वाला है। आपके मेरे दिलों की सफाई के लिए नुस्खा, डिटर्जेंट। एक दुआ पढ़ लीजिए, मांग लीजिए, दिल में सोचिए, जिसने सताया, जिसने खपाया, जिसने कोई दुख दिया, कोई तकलीफ दी, उसको याद करिए और इस दुआ को मांगिए। रब्बना अग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबकूना बिल ईमान वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। सबको सोचिए ज़हन में जो बुरे लगते हैं, जिन्होंने सताया, जो इस वक्त भी सता रहे हैं और जो अगली जिंदगी में भी सताएंगे, सबको पेश की माफी दे दीजिए। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। ला तसरीबा, कोई पकड़ नहीं। जाओ, तुम्हें अल्लाह भी माफ कर दे। हकीकत यह कि ये जिसने अल्लाह के रास्ते में भागना होता है ना, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो लोगों की बातें याद भी रखे और फिर उनका जवाब भी दे। आपकी मेरी जिंदगी में घोड़े आएंगे, पत्थर आएंगे, उनसे टकराए बगैर अपना रास्ता बदलें। लेकिन अब अगर आपको शौक है ना कुरान सीखने का और फिर उसके बाद सिखाने का, तो फिर लोगों से उलझना छोड़ दें। जवाब देना आता है पर दूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो ही हम कुरान से जुड़ते हैं ना, तब पता है कि लोग आपकी हर बात को कुरान के खाते में डाल देते हैं। ये सिखाया है तुम्हारी किताब ने, और आपके सारे जो बातें होंगी ना वो आपके उस्तादों के नाम पे आ जाएंगी। ये सिखाती हैं तुम्हारी टीचर। लगाऊं शिकायत उनको? पहले माँ बाप के ताने देंगे, फिर उस्तादों के देते हैं। देना जरा मुझे उनका नंबर, मैं बताता हूँ, करता हूँ, तो क्या जरूरत है? खाम खा बाद में सफाइयाँ पेश करना, रोना धोना। पहली सूरत में अल्लाह ने आपको बता दिया कि एक लफ्ज बोलोगे तो 60 रोजे रखने पड़ेंगे। 3 आयत ईमान से मुतल्लिक इसमें हम देख रहे हैं, देखिएगा। आयत नंबर 2, हशर। इंसान दूसरों की मुखालफत में कभी कभी खुद को ही तबाह कर लेता है, इसलिए इससे बचने की जरूरत है। छोटी चीज बड़ी हो जाती है कई दफा हमारी नासमझियों की वजह से। सूरत हशर आयत 9, बड़े दिल वालों से अल्लाह बड़े काम लेता है। और बड़ा दिल एक तो पैसे देने लेने के मामले में होता है ना, एक दूसरों को माफ करने वाले भी बड़े, उनके दिल बड़े बड़े होते हैं, गैलन्स नहीं, उसके अंदर टन्स, तकलीफें, दुख, सदमे आ जाते हैं। हजरत यूसुफ की मिसाल ले लें। आपको तो कभी कोई सताए ना तो आप कहते शुक्र है मुझे जाकर मेरे भाई बहनों ने कुएं में तो नहीं फेंका, और अगर आपके शौहर आपको कोई बुरी बात कहें तो आप कहें कि उन्होंने मुझे खौला के शौहर की तरह ये तो नहीं कह दिया। अंति अलैया का जहरी उम्मीद, हमेशा ऊपर मिस्टेक रहे। जो हुआ उससे बड़ी बात भी तो हो सकती थी। बात की है, हाथ तो नहीं लगाया, हाथ लगाया है तो पकड़ कर कोई चोट तो नहीं लगी। हमेशा पॉजिटिव रहे, इनशाला आप देखिएगा ज्यादा दिन नहीं लगेगा ऐसा। अल्लाह को भी पता है, बंदों को भी पता है कि क्या गलत है क्या ठीक है। फिर दिलों को जोड़ने की दुआ हमने सीखी आयत 10 में, अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे। जिन दिलों में अल्लाह का रोब होता है, अल्लाह इनका रोब दुश्मनों के दिल में डाल देता है। आज उम्मत मुस्लिमा इससे बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड है। जंगल के शेर की तरह नहीं, सर्कस के शेर की तरह दुश्मन हमें नचा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अंदर से ये मुसलमान बिल्कुल खोटे हैं और खाली हैं। ये इस जंग में दरख्त काटने की बात हुई थी, क्योंकि वो जंगी टैक्टिस थी। इतना बड़ा शोशा उन्होंने उठाया कि गोया के किसी बंदे को काट दिया। कल भी ये आदत थी, आज भी इंसानों को काटने में कोई दरेग नहीं, दरख्तों के काटने पे और नेचर और माहौल और जानवरों के हकूक के लिए खड़े होने वाली कौमें कई दफा इंसानों के हकूक को पामाल करती हैं। अब कुरान की सूरत में इसमें हमने पढ़ा नहीं है कि काटो, लेकिन अल्लाह ने कहा कि कहा है, कहाँ कहा है? वही है खफी। अल्लाह ताला निफाक से बचाए सबको। इसमें दिलों की सफाई की बात हुई है। क्यों करें दिल साफ, गंदे ही रहने दें? गंदे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसकी मार्फत नहीं आएगी। कोई मेहमान आता है तो घर को साफ करते हो ना? तो अल्लाह को अगर दिल में बसाना है, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में लाना है, तो दिल को साफ करना पड़ेगा। गिल की बात है, ऐसा जरासीम है जो एक दफा दिल में आ जाए तो मजीद अखलाकी खराबियां आती हैं। सबसे पहले दिल में गिल आता है, बंदे से किसी से चिढ़ हो जाती है, फिर आप उसकी गीबत करते हैं, चुगलियां करते हैं, फिर उसको ताने देते हैं, वो सारी सुरख हुजरात वाली लिस्ट खड़ी हो जाती है, तो दिल ही साफ कर ले। कोई कहते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं कहती हूँ प्यार से देखेंगे तो अच्छे लगेंगे, जरा सा गुस्से से देखें फिर देखें कितने बुरे लगेंगे। जो प्यार से देखता है उसको बंदा प्यारा लगता है, जो गुस्से से देखता है उसको बंदा बुरा लगता है। तो इसको यहीं खत्म कर दीजिए। गिल की तबाहकारियां क्या हैं, इससे दिल भी फटते हैं और घर भी टूटते हैं, अल्लाह हमें इससे बचा के रखे। फेथ इन एक्शन क्या है, ताकतवर दुश्मनों से डरने की बजाय अलकवी पर मुकम्मल भरोसा रखना है, क्योंकि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। आज सहूर सेशन में हमने यही दुआ सीखी है कि दुश्मनों पे कैसे गलबा पाया जाए। अपने मुसलमान भाइयों की मदद और उनके हक में दुआए खैर करनी चाहिए। अपने मुसलमान भाइयों के लिए ईसार और कुर्बानी का जज्बा रखना है। किसी मोमिन के लिए अपने दिल में नफरत और बुग़ज़ नहीं रखना। और इस रुकू में हमने वो वाक़या देखा है, मेहमान को खिलाने के शौक में खुद भूखे सो गए, शोहर बीवी भी बच्चे भी। यूसिरून अला अनफुसिहिम वलव कान बिहिम खसासा। हमने सूरत हशर की इंडेक्स स्टडी की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग हिकमतुल बालिगा कोर्स करते हैं तो वो उसके अंदर खुद बहुत ही आ जाएगी। इस पे इतनी लंबी बात हुई थी। आज उम्मत मुस्लिमा को पनपना है तो अपना पेट काट कर दूसरों को खिलाना पड़ेगा। आगे देखिए रुकू नंबर 2, 11 से 17। मुसलमान दुश्मन कौमें आपस में इत्तहादी, यानी दुश्मन तो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हुए पड़े और मुसलमान एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं। अलम तरा इल्लज़ीना नाफ़क़ू यकूलून लिख्वानिहिम, क्या तूने मुनाफिकों को ना देखा कि अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं, अगर तुम जिला वतन किए गए तो जरूर बिल जरूर हम तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे, और तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात न मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की जाए तो बखुदा हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि ये कतन झूठे हैं। यानी उम्मीदें बड़ी दिलाते हैं लेकिन वक्त आने पे पीछे हो जाते हैं, उस बात को सुनते और मानते ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ऐसे लोग कौन से हैं, अगर वो जिला वतन किए गए तो ये इनके साथ नहीं जाएंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो ये इनकी मदद भी ना करेंगे, और अगर बिलफर्ज मदद पर आ भी गए तो पीठ फेर कर भाग खड़े होंगे, फिर मदद ना किए जाएंगे। मुसलमानों यकीन मानो। अब जरा से इस लफ्ज मुसलमानों पे गौर कीजिए, अल्लाह को कोई जरूरत तो नहीं थी इस तरह बात करने की आपके मेरे लिए, लेकिन हमारी तवज्जो चाहता अल्लाह ताला। मुसलमानों यकीन मानो कि तुम्हारी हैबत इनके दिलों में बनिस्बत अल्लाह की हैबत के बहुत ज्यादा है। ये इसलिए कि ये बेसमझ लोग हैं और ये सब मिलकर भी तुमसे लड़ नहीं सकते। हाँ, ये और बात है कि कला बंद मुकामात में हो या दीवारों की आड़ में हो, इनकी लड़ाई तो इनकी आपस में ही बहुत सख्त है। गो आप इन्हें मुत्तहिद समझ रहे हैं लेकिन इनके दिल दरअसल एक दूसरे से जुदा हैं, इसलिए कि ये लोग बेअकल हैं। यानी इनका सिर्फ एक ही कॉमन कॉज है और वो है इस्लाम दुश्मनी, वरना तो सलीबी जंगे जाकर देख लीजिए, यहूद और नसारा की जंगों से तारीख भरी पड़ी है। आज हमें लगता है कि ये सब एक तरह सोचते हैं, हालांकि ये सब एक तरह नहीं सोचते, और इन लोगों की तरह जो इनसे पहले ही कुछ गुजरे हैं, जिन्होंने अपने काम का वबाल चख लिया और जिनके लिए अलमनाक अजाब तैयार है, शैतान की तरह किसने इंसान से कहा कि कुफर कर, यह अब शैतान का वारदात का तरीका बताया जा रहा है। जब वो कुफर कर चुका तो कहने लगा मैं तुझसे बरी हूँ, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। देखिए झूठ बोल रहे हैं। आज भी वो लोग जो कहते हैं ना अल्लाह से बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है, और बुरे काम नहीं छोड़ते, वो शैतान की तरह सिर्फ एक लिप सर्विस कर रहे हैं। बस दोनों का अंजाम ये हुआ कि आतिशे दोजख में हमेशा के लिए गए, और जालिमों की यही सजा है। क्या पता चला कि झूठे डर से पनाह मांगनी चाहिए। शैतान अल्लाह से डरा लेकिन बात नहीं मानी अल्लाह की। तो आपके मेरे लिए अमल के नुक्ते क्या हैं कि गैर मुस्लिमों के जुबानी वादों और दावों पर भरोसा नहीं करना। मुफाद परस्त लोग किसी मकसद पर इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए लोगों से नहीं सिर्फ अल्लाह ताला से डरना है। और रुकू नंबर 3, आयत नंबर 18 से 24। अब सूरत का क्लाइमेक्स आ रहा है, अमूद है ये, क्या अजमत कुरान करीम, बड़ा ही फेमस, बड़ा मशहूर रुकू है। इसी में वो आयत है जिसमें कल आपको प्रोजेक्ट्स दिखाए थे लिगत लफ्ज पे, नॉर्वे का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लिगत है फॉर टुमारो। ये आयत को जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा अंदाज है इसका। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगत, आपके नाम आपके रब की कॉल है, अटेंड कीजिए। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स देखभाल ले के कल क्यामत के वास्ते इसने आमाल का क्या जखीरा भेजा है, और हर वक्त अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ताला तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है, और तुम इन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को भुला दिया तो अल्लाह ने भी इन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया। और ऐसे ही लोग नाफरमान यानी फासिक होते हैं। अहले नार और अहले जन्नत बाहम बराबर नहीं, जो अहले जन्नत हैं वही कामयाब होने वाले हैं और जो अहले नार हैं वो नाकाम हैं। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तू देखता कि खौफ इलाही से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयान करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, छुपे खुले का जानने वाला, मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह है, नहायत पाक, सब ऐबों से पाक, सब ऐबों से साफ, अमन देने वाला, निगेबान, गालिब, जोरावर और बड़ाई वाला। पाक है अल्लाह इन चीजों से जिन्हें ये इसका शरीक बनाते हैं। वही है अल्लाह पैदा करने वाला, वजूद बख्शने वाला, सूरत बनाने वाला। इसी के लिए नहायत अच्छे नाम है। हर चीज ख्वाब आसमानों में हो या ख्वाब जमीन में हो, इसकी पाकी बयान करती है, और वही गालिब हिकमत वाला है। इस एक आयत पे कितने नाम है अल्लाह के, गिने आपने? अमेज़ बाय अस्माउल हुस्ना सीरीज इस एक आयत के ऊपर कई हफ्ते बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं तो उर्दू सीरीज वेबसाइट पे मौजूद है। एक एक नाम सुनना शुरू कर दें, पूरा साल लगा दें, कोई बात नहीं। मेरा लबान 18 नाम है, एक नाम 1 घंटे का है, ऑलमोस्ट कुछ कम भी है लेकिन उसके अराउंड है। आप यकीन करेंगे आपको ऐसे लगेगा कि मैं किसी और ही हस्ती से मिल रही हूँ। वो अल्लाह जिसका बचपन से हमें एक तारुफ दिया गया ना, वो बहुत मुख्तलिफ है उस अल्लाह से जो असल में वो मौजूद है। ईमान से मुतालिक दो आयात, हशर 18, कल के लिए हमने क्या तैयार किया। कितनी फिक्र होती है हमें अगर कल हमारे घर दावत हो, कितनी तैयारियां होती हैं अगर कल हमने शादी में जाना हो। क्या मेरा आज का दिन ऐसा होता अगर कल मैंने पाकिस्तान या इंडिया जाना होता? किसी भी सफर से पहले का दिन कैसा दिन होता है? इन सारे जुमलों में से ढूंढिए कि आने वाले कल की तैयारी है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा आज है और आखिरत एक कल है। एनी टाइम इट कैन कम। एक होता है यस्टरडे और एक होता है टूमारो। अल्लाह इज आस्किंग व्हाट एवर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर टूमारो, कल के दिन के लिए क्या तैयार किया। और I-23 अमेज़ बाय अस्माउल हुस्ना, हम सारी बातों को देखें ना, तो अल्लाह का एक नाम लिया जाए तो शैतान भाग जाता है उधर से, अजान की आवाज़ सुन के भाग जाता है, फिर खत्म होती है तो आता है, फिर इकामत होती है तो फिर भाग जाता है। शैतान को अल्लाह का एक नाम अच्छा नहीं लगता, और जब बंदा नमाज शुरू करता है तो फिर दिल में आके वसवसे डालता है। तो याद रखिए, शैतान अल्लाह से डरने की बात तो करता है, पीछे हम पढ़कर आए हैं, लेकिन अल्लाह की बात नहीं मानता था। आज आपको मुझे भी अल्लाह के इस नाम को, अल्लाह की इस किताब को पढ़ते हुए नियत करनी है कि झूठा दावा नहीं करूंगी कि मैं अल्लाह से डरती हूँ। फिर आप देखिए कि हमने कुरान की विशफ देखे हैं। कुरान छोटी चीज नहीं है, अल्लाह ने आपके सीने में डाल दिया, ये अल्लाह ही का कमाल है, आपका मेरा कोई कमाल नहीं है। आगे पढ़ेंगे हम, सूरह कियामत में भी आएगा कि ये तो हम ही डालते हैं, सूरह मारिज में भी आता है। ये पहाड़ है, ये पहाड़ सर करने से बड़ी बात है, माउंट एवरेस्ट को पार करने से ज्यादा है। आप और मैं कितना को टूटे हैं, आप और मैं कितने को फूटे हैं, ये हमने खुद से पूछना है। हमने साथ में बारे में बात की थी, वैदा समीओ माउन जिला रसूली तरा यूनम तफी दुमे दमी, वहां मैंने एक लफ्ज बोला था, एक जुमला या एक कॉन्सेप्ट दिया था एक्सप्लोर करने को। देखिए एक्सप्लोजन क्या होता है, चीज बाहर गिरती है, एक डायनामार मारे तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े बाहर जाते हैं। कुरान ये नहीं करता, कुरान आपको अंदर तोड़ता है। आज बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है ना, तो वो चीज टूट के अंदर ही अंदर, वो जैसे ग्राइंडर में नहीं आप देखते बार बार, फिर अंदर ही वो जो कोई सब्जी फ्रूट भी होता है तो वो अंदर ही अंदर जाता है ना, तभी तो उसके क्रशर में आएगा ना। कुरान आपको अंदर से तोड़ता है। अल्लाह करे अंदर से मैं और आप टूट चुके हों, अल्लाह ना करे हमें मुश्किलों में डाल के अल्लाह तोड़े, किसी ग्राइंडर में, किसी तकलीफ में, मुश्किल में डाले। और जो खसूसियत इस कुरान की है ना कि ये बंदे को तोड़ता है, कल वही अल्लाह के दीदार के वक्त होगी, बंदे को यकीन नहीं आएगा कि मैं किसके सामने हूँ। तो फेथ इन एक्शन क्या है कि अल्लाह के सामने जवाबदेही से डरना, اپنی آخرت کی فکر آج کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بندگی کے مقام کو پہچاننا ہے. یہاں خوبصورت پیغام پہ سورت حشر پوری ہوئی اور اگلی سورت ممتحنہ ہے. دیکھیے فیمینن سیگے ہیں، سارے گول تائیں جتنی بھی ہیں نا یہ تانیث کی ہیں، یعنی فی میل کی تائیں ہیں، دونوں کا ربط لیجیے. ابھی سورت حشر میں ہم نے منافقین کے متعلق کچھ باتیں پڑھی، اور سورت ممتحنہ میں اب ان لوگوں سے دوستی سے روکا جا رہا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا. سورت ممتحنہ ترتیب میں 60 نمبر کی سورہ ہے اور 13 آیات ہیں اس کی. ممتحنہ امتحان لفظ ہے. اس کا مین تھیم کیا ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان تعلقات کی حدیں اور اللہ اور رسول سے وفاداری کے گرد یہ سورت گھومتی ہے. اس کا نزول صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ہوا 7 یا 8 ہجری میں. دین کا فائدہ ذاتی فائدے سے زیادہ ہو، یہ پیغام ہے اس سورت کا. دارالکفر سے دارالحجرہ پہنچنے والوں کے لیے کچھ شرائط ہیں سورت کے اینڈ پہ، آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکو نمبر 1 1 2 6. اللہ کے دشمن ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو اس بات کا یقین رکھنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. پھر آپ کے نام کال آ گئی، آج ان کالز کو اٹینڈ کیجئے گا اور دعا کریں کہ اللہ میرے اور تیرے بیچ میں ایک ایسا رابطہ بن جائے جو صرف رمضان کا محتاج نہ ہو، صرف دورہ قرآن تک ہی یہ تعلق نہ ہو، مجھے بعد میں بھی کال کرتے رہنا اور میں اس کال پہ کان رکھوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میری اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں. پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو. اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام خفیہ خفیہ بھیجتے ہو اور مجھے معلوم ہے کہ جو تم نے چھپایا ہے اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا. تم میں سے بھی جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا. حاتم نبی بلتا نے خط لکھ دیا تھا، اسی کی طرف اشارہ. اگر وہ کہیں تم پر قابو پا لیں یا وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی کرنے لگے اور دل سے چاہنے لگے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ، تمہاری قرابتیں رشتے اور ناطے اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی. وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں. نوٹ کیجئے، حضرت ابراہیم جیسا امتحان ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے، ان کا امتحان ہم سے بڑا تھا. ان کے عمل کو اپنے لیے اسوہ بنائیے. ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی. لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا کوئی اختیار بھی نہیں. اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اے ہمارے رب، تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. دعا آپ بھی یاد کر لیجئے. ربنا علیک توکلنا والیک نبنا والیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. آمین. یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی منہ پھیرے تو اللہ بالکل بے نیاز ہے اور وہ تعریف کے لائق ہے. تم نہیں ناراض کر سکتے اس کو ناراض کرنے والوں کو، تو پھر اس کی ناراضگی سے ڈرو. ایمان سے متعلق دو آیات. 1 ممتحنہ، جو کام کریں گے ان سے ہی غلطیاں ہوں گی. تو آپ کی طرح آپ کی غلطیاں بھی ہمیں پیاری ہیں، یہ اخلاق دیجئے تو لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے. ٹیم بریک ہوتی ہے اس لیڈر کی اس بات پہ جس پہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطی پہ ان کو کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں. याद रखिए, दीन का काम करने वाले फरिश्ते नहीं होते, ना आप उनसे एक्सपेक्ट कीजिए, पर फरिश्ते होंगे तो फिर वो आप ही के पास आएंगे। तो लिहाजा ऐसी छोटी छोटी चीजों पे रूठना नहीं, ये सारा मजमून आगे सूरह सफ में आने वाला है। फिर आयत 4, लोगों को नहीं इनकी गलत रस्मों और इनके गलत तरीकों को छोड़ना है। एक बहुत बड़ी गलती कुरान पढ़ने वाले से होने लगती है, आप ना कीजिएगा। ये भी गलत, वो भी गलत, ये भी हराम, ये भी नाजायज, ये भी मकरूह, ये कबीरा, ये सगीरा। ये आपके कमेंट किस पे होंगे? जो आपके इर्द गिर्द वाले, कल तक जिनके साथ आप खुद भी थे। अब आप उठकर बैठकर ये सारा कुछ सुबह करें। मैंने अपनी सारी दोस्तों को तलाक दे दी, मैंने अपनी सारी कजन्स को आग कर दिया, मैं अपने मियाँ साहब को छोड़ने का सोच रही हूँ, बच्चे तो मुझे वैसे ही नहीं अच्छे लगते। वल्लाही पहली दफा का कुरान पढ़ के ऐसा मिजाज ना बनाइएगा, वरना लोग इस कुरान को बातें करेंगे। कुरान नहीं बुरा, असल में कोई आपका पहले से उनके साथ प्रॉब्लम तो चल ही रहा था, कुरान बुरा बन जाएगा। गुस्सा किसी और पे आया होता ना, तो जो सामने आता है उसको बात मिल जाती है। तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा अपने रिश्तों के मामले में। ये है घर और कुरान साथ साथ। घर नहीं तोड़ना और अल्लाह का ताल्लुक भी नहीं छोड़ना। आप कहते ताल्लुक भी वो तोड़ना है तो वो तोड़ना है, ना ना, आप एक देखें ना, ये शेंगलियर को देखें, ऊपर शेंगलियर तक किसी को पहुंचना है, एक हाथ से उसको पकड़ेगा तो नीचे से आपको पकड़ कर ऊपर करेगा ना, और अगर उधर से हाथ छोड़ दे कोई तो वो खुद भी गिरेगा, तो हम भी। हम अल्लाह से ताल्लुक की डोरी नहीं छोड़ेंगे, कुरान नहीं छोड़ना किसी के मना करने पे, गुस्से पे, लेकिन उनको ऊपर बुलाना है, ना कि खुद नीचे आना है। पैगाम क्या है? बच्चों की खातिर ईमान कमजोर ना कीजिए, क्योंकि कल यही ईमान आपके बच्चों को जन्नत में आपके साथ बुलंद दर्जों पे ले जाएगा। कभी आपके बच्चे के ना, मामा आपको क्या हो गया है, अम्मी आप बदल गई, माम हर वक्त आप ये, तो आपने कहना बेटा मैं अब आपके लिए भी तो कुछ जमा करूँ ना, फिर मैंने आपको वो 40 दर्जे से 80 में तो लेके आना है ना, दर्जा याद आ गया होगा आपको जिधर बात हो रही है। फिर देखिए इब्राहिम की बात आ गई, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि मोहब्बतों के जिहाद की बात हो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा ना आए। हजरत इब्राहिम के बारे में हमने पीछे एक खूबी पढ़ी थी, अवाह आहें भरने वाला, नरम दिल। आज हमारे यहाँ नरम दिली का मतलब पता क्या है? जो कोई कुछ कार्य करने दो, अब्बू बड़े नरम दिल है, बेटियों के गलत कपड़ों पे नहीं बोलते। मियाँ सब बड़े ही नरम दिल है, इसलिए बेगम सर पे चढ़ी हुई है लेकिन उसको उतार के नीचे नहीं फेंकते। ये नरम दिली नहीं है। इब्राहिम नरम दिल थे, लेकिन देखिए पूरी तनकीद की, बुत तक तोड़ेंगे आगे जाकर। तो नरम दिल वो नहीं होते जो गुनाह होता देख कर खामोश रहे, नरम दिली रिश्तेदारों को गलत काम देख कर मोहब्बत से रोकने की कोशिश में नजर आएगी। आपका मेरा अपने रिश्तेदारों के साथ सबसे प्यारा ताल्लुक पता क्या है? कि आप उनको अभी से रोक लें। जो आज अपने प्यारों को गलत काम करने से नहीं रोक रहे ना, कल फिर उनको जहन्नम में जलता देखने की सजा भुगतेंगे, और अल्लाह हम सबको बचा के रखे। फेथ इन एक्शन, किसी काफिर से दिली लगाव नहीं रखना, ये दुनिया और आखिरत में किसी काम नहीं आएगा। कयामत के दिन हमारे प्यारे किसी काम नहीं आ सकते, इसलिए उनकी मोहब्बत में प्यार करने वाले रब को नाराज नहीं करना। लोगों के गलत तरीकों से अलग होना है, ये नोट करने, लोग नहीं छोड़ने, गलत बातें छोड़नी है, उन महफिलों से निकलना है। जब वो महफिल खत्म तो फौरन पहुंचिए उनकी खिदमत करने के लिए, खिलाइए पिलाइए, खिदमत कीजिए, फिर देखिए आपको क्या मोहब्बत मिलती है। तो क्या करना है? उनके गलत तरीकों से अलग होना है, उनसे नहीं। रुकू नंबर 2, 7 से 13, कुफार से नेक सलूक और दोस्ती की शरायत। असल्लाहु यजल बैनकुम व बैन अल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा। अब देखिए कितनी होपफुल आयत है, जरा सा तवज्जो रखिएगा इस तर्जमे पे। क्या अजब है कि अन करीब ही अल्लाह ताला तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में मोहब्बत पैदा कर दे। कितनी होप है इसमें? आप क्यों फतवे दे के आ गई कि इसने नहीं बदलना, इसने नहीं बख्शे जाना, इसको नहीं, वो नहीं, वो नहीं, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें क्या पता है आज नफरत वाला दिल है, कल मोहब्बत वाला दिल बन जाए। अल्लाह को सब कुदरत है और अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, इनके साथ सलूक और एहसान करने और इंसाफ वाला रवैया बरतने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह हमें भी इंसाफ करने वाले बना दे। अल्लाह ताला तुम्हें सिर्फ इन लोगों की मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाइयां लड़ी और तुम्हें देश से निकाल दिया और देश से निकाल देने वालों की मदद की। जो लोग ऐसे कुफार से मोहब्बत करें वो कतन जालिम है। आगे या अय्युल्लज़ीना आमनू इज़ा जाकुमुल मोमिनातु मुहाजिरात, आपके नाम पुकार। ये बड़ी अहम आयत है, इसको पढ़कर तो दिल करता है कि बंदा कह दे कि वल्लाही माला हाज़ा कलामुल बशर। आप देखिए, अल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी साथ में करेगा। मैं हिंट क्यों दे रही हूँ कि तर्जुमा जरा मुश्किल है। मक्का से औरतें मदीना आती हैं इस्लाम कबूल करने के बाद। मक्का में इनके शौहर हैं जो कुफर पे हैं। अब उन औरतों के साथ क्या मामला किया जाए, फिर उनके शौहरों के साथ क्या किया जाए, फिर उनके हक महरों का क्या किया जाए। और इसी तरह वो मुसलमान भाई जिनकी औरतें मुसलमान मक्का में रह गई, उनके क्या मामले हो। इनको पढ़ के लगता है कि अल्लाह ने हर हक वाले को हक दिया। और मैं सोचती सिर्फ कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब होती तो ये जरा सुनिएगा इन सारी बातों की क्या जरूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आए तो तुम इनका इम्तिहान लो। दरअसल इनके इम्तिहान को बखूबी जानने वाला तो अल्लाह ही है। बस अगर वो तुम्हें ईमानदार मालूम हो तो अब तुम इन्हें कुफार की तरफ वापस ना करो। ये उनके लिए हलाल नहीं क्योंकि वो कुफर पे हैं, ये इस्लाम पे आ गई। और ना वो इनके लिए हलाल हैं जो खर्च यानी हक मेहर की तरफ इशारा है इन कुफार का हुआ हो, वो इन्हें अदा कर दो। ये आपका दीन। हमारे यहाँ कहते हैं कुफार इनको खूब नुकसान पहुंचाओ, इनके क्रेडिट कार्ड यूज करो और मुल्क से भाग जाओ, फिर पीछे से पैसे मांगते रहेंगे। वो आएगा इस्लाम की तरफ, कैसे धोखेबाज होते हैं शॉपिंग कर करा के और उनके होटलों में रह के उनकी चीजें तोड़ फोड़ के निकल जाए, कौन बाद में पूछता है। ये है अखलाक, इसकी कोशिश कीजिए, इस्लाम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इन औरतों को इनके मेहर देकर इनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। और काफिर औरतों की नामूस अपने कब्जे में ना रखो, और जो कुछ तुमने खर्च किया हो वो भी मांग लो। यानी खुदा नासा किसी मुसलमान की बीवी कुफर पे चली गई तो उसके साथ क्या मामला होगा, अब इसका तस्कर है। और जो कुछ इन कुफार ने खर्च किया हो वो भी मांग लें, ये अल्लाह का फैसला है जो तुम्हारे दरमियान कर रहा है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और कुफार के पास चली जाए, फिर तुमको उसके बदले का वक्त मिल जाए तो जिनकी बीवियां चली गई हैं इन्हें इनके खराजात के बराबर अदा कर दो। और इस अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। घर और कुरान साथ साथ, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कपल्स के आपस के मामलात को कुरान देखिए इतने खोल के पेश कर रहा है, कौन कह सकता है कि इस कुरान को पढ़ के घर टूटते हैं। ऐ पैगंबर, जब मुसलमान औरतें आपसे इन बातों पर बैत करने आए कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिनाकारी ना करेंगी, अपनी औलाद को नहीं मारेंगी और कोई ऐसा बहतान ना बांधेंगी जो खुद अपने हाथों पैरों के सामने घड़ लें, और किसी नेक काम में आपकी बेहुक्मी ना करेंगी, तो आप इनसे बैत कर लिया करें और इनके लिए अल्लाह से मगफरत तलब करें। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और माफ करने वाला है। फिर आपके नाम पुकार, या अय्युल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, ऐ मुसलमानों तुम इस कौम से दोस्ती ना रखो जिस पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो चुका है, जो आखरत से इस तरह मायूस हो चुके हैं जैसे कि मुर्दा अहले कब्र से नाउम्मीद हैं। चार आयात ईमान से मुतल्लिक, 10 मुमताहना, मुसलमान का निकाह मुशरिक से जायज नहीं। सारे पेरेंट्स और सारे यंग बच्चे बच्चियां कान खोल कर सुन लें, ये अल्लाह का हुक्म है। आयत 11, ला दरर व ला दरार, न तुम किसी को तकलीफ दो न कोई तुम्हें तकलीफ दे। इस्लाम का खूबसूरत असूल है ये, और इस असूल के मुताबिक जिंदगियां बसर करेंगे तो कामयाब होंगे। आयत 12, मुमताहना, कुरान जीने और जाने दोनों के तरीके सिखाता है, यानी जीने और मरने के। आयत 13, मुमताहना, अल्लाह को नाराज करने वालों से आपने दोस्ती नहीं करनी। जब अल्लाह को नहीं वो राजी कर सके तो आपको कैसे राजी करेंगे। फेथ इन एक्शन, जो गैर मुस्लिम आपको नुकसान ना दें इनसे इंसाफ के साथ अच्छा सलूक रखिए। मुसलमानों के लिए मुशरिक से निकाह करना जायज नहीं, खुद को धोखे में नहीं डालना। दीन की तरफ आने वालों को इब्तदाई दर्जे पर ही परख लेना चाहिए ताकि कोई धोखा ना खाए।